आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं, 21वीं सदी का गंगा अवतरण।
जी, ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा 1988 से 90 के दौर में रची गई क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला का एक अहम हिस्सा है।
हाँ, और इस साहित्य के बारे में पूज्य गुरुदेव ने स्वयं जो कहा था वो बात आज भी गूंजती है।
बिल्कुल, कि मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा।
मेरे ज्ञान शरीर को मेरे क्रांतिधर्मी साहित्य के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो हमारा मकसद आज यही है, इस दूरदर्शी पुस्तक के मूल विचारों को खंगालना,
समझना।
बिल्कुल, ये पुस्तक करीब 45 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसमें उस वक्त के विश्व का विश्लेषण है और आने वाले कल मतलब 21वीं सदी के लिए एक स्पष्ट दिशा दिखाई देती है।
इसकी शुरुआत ही काफी कह सकते हैं चौंकाने वाली है।
पुस्तक बताती है कि कैसे पिछली 3 सदियों में विज्ञान ने
हाँ तरक्की तो बहुत की। जी, तरक्की हुई लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया। इससे समस्याएं बढ़ गईं, जैसे प्रदूषण, घातक हथियार और समाज में एक तरह की बेचैनी।
हाँ, ऐसा लगता है मानो इंसान पुरानी मुसीबतों से निकलकर नई में फंस गया हो।
सही कहा, और इसकी जड़ पकड़ी गई है सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं बल्कि इंसान की सोच में। पूज्य गुरुदेव इसे विचार विकृति और आस्था संकट कहते हैं।
अच्छा, तो मतलब असली समस्या बाहर नहीं अंदर है, हमारी सोच और विश्वासों का कमजोर होना।
जी हाँ, बिल्कुल, उनका मानना यही था। तात्कालिक फायदे और सिर्फ दिखने वाली चीजों पर जोर देने से वो जो मानवीय मूल्य थे वो पीछे छूट गए।
तो फिर समाधान क्या सुझाया गया? यहीं पे विचार क्रांति की बात आती है ना?
एकदम सही, समाधान बताया गया विचार क्रांति, मतलब लोगों की सोच को बदलना, उसे बेहतर बनाना।
हाँ।
गलत चीजों के खिलाफ लड़ना और इंसानियत के रास्ते पर चलना।
हाँ, और इसी को 21वीं सदी में सकारात्मक बदलाव लाने का तरीका माना गया, एक नई शुरुआत जिसे ज्ञान गंगा का अवतरण कहा गया। और इस बड़ी सोच को अमल में लाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ लिखा ही नहीं, उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपने संसाधन सब लगा दिए।
जी, अखंड ज्योति जैसी पत्रिकाएं, हजारों पुस्तकें और जो हमारे प्राचीन आर्ष ग्रंथ हैं उनका सरल अनुवाद, ताकि अच्छे विचार हर किसी तक पहुंच सकें।
फिर शांति कुंज को इसी काम के केंद्र के तौर पर स्थापित किया गया।
हाँ, वहाँ लोगों को ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता था, जिन्हें युग शिल्पी कहा गया, यानी नए जमाने को गढ़ने वाले।
अच्छा, युग शिल्पी।
और साथ ही वानप्रस्थ परंपरा को दोबारा जीवित किया गया, ताकि लोग समाज सेवा के लिए अपना समय दे सकें, मतलब समर्पित जीवन जी सकें।
यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है, विज्ञान और अध्यात्म का संगम। शांति कुंज में ब्रह्मवर्चस नाम का एक शूद संस्थान भी है।
ये काफी अनोखा है ना?
बिल्कुल, इसका मकसद ही यही है कि अध्यात्म की बातों को वैज्ञानिक नजरिए से परखा जाए, उन्हें साबित किया जाए।
अच्छा, साथ ही जड़ी बूटियों पर भी रिसर्च होती है, तो ये दिखाता है कि पूज्य गुरुदेव सिर्फ भावनाओं या आस्था की बात नहीं कर रहे थे, उसे तर्क और विज्ञान से भी जोड़ना चाहते थे।
और आम लोगों तक पहुंचने के लिए दीप यज्ञ जैसे तरीके अपनाए गए। ये क्या था, ये सरल तरीका क्यों?
जी, ये यज्ञ का एक बहुत ही सरल रूप था, कम खर्च और कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने का एक प्रभावी तरीका।
मतलब बड़े बदलावों के लिए सरल और असरदार रास्ते खोजे गए।
हाँ बिल्कुल, जटिलता से बचते हुए।
पुस्तक में 1989 से 2000 तक के 12 साल को युग संधि काल कहा गया है। इसका क्या मतलब है ये युग संधि?
युग संधि यानी दो युगों के मिलने का समय, एक तरह का नाजुक मोड़, जैसे रात और दिन के बीच सुबह होती है वैसा।
अच्छा।
पूज्य गुरुदेव का मानना था कि ये वो समय था जब पुरानी गलतियां, अवांछनीयताएं वो खत्म होंगी और 21वीं सदी के अच्छे भविष्य की नींव रखी जाएगी।
और भविष्य को लेकर काफी उम्मीद जताई गई पुस्तक में, नस्टरडामस, जीन डिक्सन, महर्षि अरविंद जैसे कई भविष्यवक्ताओं का जिक्र है।
हाँ, जो कहते हैं कि 21वीं सदी भारत के नेतृत्व में शांति और बराबरी का युग लाएगी।
ये सुनकर एक हिम्मत बनती है आज भी।
इसी बदलाव को 21वीं सदी का गंगा अवतरण कहा गया, मतलब ज्ञान और चेतना की एक नई धारा का प्रवाह।
और इसकी गंगोत्री यानी इसका स्रोत शांति कुंज को माना गया।
जी, वहाँ 12 साल का एक विशेष आध्यात्मिक अनुष्ठान भी चला था, युग संधि महापुरश्चरण, 1989 से 2000 तक।
और उसकी पूर्णाहुति 2001 में होनी थी, 1 करोड़ साधकों के साथ।
हाँ, ऐसी योजना थी और उसका असर अगली पूरी सदी तक रहने की उम्मीद व्यक्त की गई थी।
इसी दौर में मतलब युग संधि काल में नारी जागरण पर भी बहुत जोर दिया गया।
जी बिल्कुल, उसे एक महान आंदोलन के रूप में उभरने की बात कही गई। स्त्रियों की शिक्षा, उनका स्वावलंबन
और सामाजिक बुराइयों, खासकर ये फिजूल खर्ची वाली शादियां, इनको खत्म करने की बात।
हाँ, और इसके लिए 24,000 महिला दीपयज्ञों का लक्ष्य रखा गया था। आप सोचिए, महिला संगठन और चेतना जगाने के लिए कितना बड़ा संकल्प था ये।
बहुत बड़ा।
तो अंत में, ये पुस्तक सिर्फ विश्लेषण या भविष्यवाणी नहीं है, ये एक पुकार है, एक तरह का न्योता है
कि इस विचार क्रांति और नए युग के निर्माण में हर कोई अपना योगदान दे।
बिल्कुल, चाहे समय देकर या अंशदान देकर। और ये भरोसा दिलाया गया है कि ये बदलाव होकर रहेगा, क्योंकि ये दैवीय योजना, मतलब महाकाल की इच्छा का हिस्सा है।
और पूज्य गुरुदेव का काम उनके न रहने पर भी उनकी सूक्ष्म शक्ति और उनके अनुयायियों द्वारा चलता रहेगा, ये विश्वास दिलाया गया है।
जी हाँ,
वाकई बहुत गहरी बातें हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं ये।
और यही आज का विचारणीय बिंदु भी है शायद, कि लगभग 35 साल पहले लिखी इस पुस्तक की बातें, जो समस्याएं बताई गईं, जो समाधान दिए गए, वो आज हमें कितने सच्चे लगते हैं।
हाँ,
और जिस ज्ञान गंगा के बहने की उम्मीद पूज्य गुरुदेव ने जताई थी, क्या उसकी धारा आज हमें अपने समाज में महसूस होती है, या फिर उसे साकार करने के लिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर और प्रयास करने होंगे?